نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اسلام اے ٹو زی. الحمدللہ ہم اس میں کہاں کھڑے ہیں. ہم نے سب سے پہلے دیکھا, بولیے, اسلام کتنے حصے, کون کون سے, حقوق اللہ کے دو حصے. دیکھیں یہ فائدہ ہوتا ہے نا سکھانے کا, پھر خود نہیں بولنا پڑتا. ٹھیک ہے, عقائد کے کتنے حصے, بولیے. چلیے, عبادات کے کتنے حصے. ٹھیک ہے, آگے چلیے, دوسرا حصے کا کیا نام تھا, اس میں کتنی چیزیں تھیں, کون کون سی. ابھی آج کل ہم کیا پڑھ رہے ہیں, ابھی تک معاملات میں کیا کیا پڑھ لیا. پہلا جی معاملات کے دو حصے تھے, کیا کیا, آداب اور حقوق و فرائض. ٹھیک ہے, وہ ہو گئی. اس میں سب سے پہلا معاملہ ہمارا کس کے ساتھ ہے, اپنے نفس کے ساتھ. اس پہ پڑھ لیا, فائدہ ہو رہا ہے, کام کر رہے ہیں اپنے اوپر, الحمدللہ. اس کے بعد دوسرا دائرہ کیا تھا ہم پہ, معاشرتی, سوشل سرکل. آج ہم اس کو کلوز کر کے تھرڈ لیول پہ چلیں گے, اور وہ ہے خاندانی معاملہ. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے رشتوں کی ڈوریوں میں باندھا ہوا ہے. آج جو میں ایک کڑوا سا جملہ بول دوں, اور وہ کیا ہے کہ ویسٹ میں جو بچوں کے دنیا میں آنے اور ان کے اس دنیا میں رہنے کے طریقے ہیں, اس میں سب سے بڑی جو جنگ اسلام کے ساتھ ہے وہ زنا کی ہے. شادی کے بغیر ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے, اگر نہ اس بچے کی نانی ہے, نہ دادی ہے, نہ خالہ, نہ پھپھو, اس کو ویلکم کرنے والے وہ ہاتھ ہی نہیں ہیں. لہٰذا اکثر وہ بھنورا توڑ گیا اور ایک عورت اپنے بچے کی خود ہی کفیل رہتی ہے. سنگل مدرس کا نام آپ نے سنا ہوگا, سنگل پیرنٹس کے نام پہ جو بھی چیزیں ہیں. اسلام زنا کا اس لیے بھی دشمن ہے, پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ دشمن ہے, کیونکہ یہ پیدا ہونے والے بچے سے بہت سارے رشتے چھین لیتا ہے. اسلام رشتوں کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہے, حساس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے خاندان کی ایک چھاؤں دی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں بھیجے گئے تھے, وہاں لوگ خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے, اور خاندان ایک بہت بڑی دفاعی فورس تھی. آج تو اگر کوئی کسی پہ زیادتی کرے تو پولیس آ جائے گی, پولیس سے بھی اوپر کیس جائے گا, کورٹ میں جائے گا, اس سے اوپر چلا گیا تو فوج اس کو ٹیک کیئر کرے گی. لیکن جن معاشروں میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا, تو اللہ تعالیٰ وہاں سے پھر لوگوں کو ان کے قریبی لوگوں کے ساتھ لے کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے جو دنیا دی ہے, جو شریعت ہے اسلام کی, اس کے پانچ مقاصد نوٹ کریں, کیونکہ یہ چیزیں سمجھے بغیر ہم رشتوں کو اور اس سارے سیٹ اپ کو سمجھ نہیں سکتے. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ جیسے کوئی بھی کمپنی ہے تو وہ آپ کے بارے میں کہتی ہے کہ میں آپ کی فلاں فلاں ضرورت کو پورا کروں گی یا کریں گے, یا کوئی بھی مسجد ہے تو وہ ہماری پانچ وقت کی نمازوں کو ٹیک کیئر کرتی ہے, اس طرح گروسری سٹورز ہیں وہ ہمارے کھانے پینے کو ٹیک کیئر کرتے ہیں, بینکس جو ہے وہ ہمارے منی کی میٹرز کی ٹیک کیئر کرتے ہیں نا. تو شریعت یعنی اسلام جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت, اسلام کے پانچ مقاصد ہیں. دیر آر فائیو بگ پرپزز آف شریعہ, یعنی اللہ نے جو شریعت آپ کو مجھے دی یہ پانچ ضرورتوں کو ضرور پورا کرے گی. نمبر ایک, لکھیے, جان کی حفاظت. دوسرا, عزت کی حفاظت. پھر مال کی حفاظت. پھر عقل کی حفاظت. اور پانچواں, دین کی حفاظت. اللہ تعالیٰ نے ان پانچوں حفاظتوں کے لیے حدیں لگائی ہیں. جان کے بدلے جان کی سزا ہے قصاص میں, کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی کسی کی جان لے لے. اسی طرح سے عزت کی حفاظت کے لیے تہمت کی سزا ہے 80 کوڑے. مال کی حفاظت کے لیے قطع ید, हाथ काटने की सज़ा, कि कोई किसी के माल को अगर हाथ भी लगाता है उसकी मर्ज़ी के बग़ैर तो उस हाथ को काट दो। और अक़ल की हिफाजत के लिए शराब हराम है, क्योंकि शराब बंदे की अक़ल को ख़राब कर देती है। और दीन की हिफाजत के लिए कह लीजिए, या नसब की, इसको आप साथ नसब की हिफाजत भी कर सकते हैं, इसके लिए ज़िना हराम है। इस्लाम चाहता है कि पैदा होता हर बच्चा पता हो ये किसका बच्चा है, इसकी टेक केयर कौन करेगा, और उस बच्चे को एक ऐसा माहौल दिया जाए कि जिसमें रहकर वो अपने आप को एक बिल्कुल मौसर शहरी बना सके। अमूमन देखा जाए तो रिश्ते जिनकी डोरियों में आप और मैं बंधे होते हैं, ये तीन किस्म के होते हैं। हमारे कल्चर में अमूमन इसमें से दो किस्में मारूफ हैं, लेकिन आम तौर पे तीन रिश्ते हैं। एक है नस्बी रिश्ते, नस्ब से, जिसमें माँ बाप, भाई बहन, खाला, फुफो, चचा, ताया, यानी वो रिश्ते जिसमें हमारा किसी न कहीं से नस्ब का रिश्ता है। दूसरी किस्म है रिश्तों की नस्ब के बाद रजात के रिश्ते, दूध शरीक रिश्ते। अरब कल्चर था कि उसमें लोग एक दूसरे को दूध पिलवाते थे। सेहतमंद औरतें खुली जगहों में, देहातों में होती, वहाँ अपने बच्चों को भेजते। और वैसे भी एक बच्चा जब एक माँ के पेट में रहा तो जो माँ का इनपुट था वो तो ले चुका, ऐसे ही है ना, 9 महीने माँ के पेट में रहा उससे तो ले चुका, इवन उसकी आदतें भी ले लेता है बच्चा, और कुछ चीज़ें जीन्स में आती हैं। दूध इसलिए पिलवाते थे कि दूसरी औरतों की भी खूबियाँ आ जाएं, क्योंकि दूध की मुद्दत 2 साल की जो है इसमें बच्चा बहुत लेता है। तो रज़ाई रिश्ते कौन से हुए? जो नसब के रिश्ते हैं ना, वो सारे रज़ाई रिश्ते हो गए। इस वक्त हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन सूरत निसा में 4वें पारे की आखिरी आयत, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, में इसकी डिटेल्स मौजूद है। तीसरी किस्म के रिश्ते हैं जिनको सहर के रिश्ते कहते हैं, स्वात, हा, रॉ, यानी स्वात के बाद दो चश्मी, हा और रॉ, कुरान में ये लफ्ज़ मौजूद है। सहर के रिश्ते क्या हैं? ससुराली रिश्ते। ये रिश्ता वजूद में आता है किसी न किसी के निकाह से, मसलन ऑफ़ कोर्स शोहर बीवी को कह लीजिए, इसी तरह से सास, बहू, नंद, भावच, मोमानी, चच्ची, जी, यानी बिल्कुल शौहर के जो भाई बहन हैं उनके साथ जो भी रिश्ते हैं। ये तीन रिश्तों की डोरियाँ, जो नसब के रिश्ते हैं ना, इसको कभी भी कोई ना बदल सकता है ना काट सकता है। इनमें फिर कुछ ऐसे हैं कि कुछ के तो वो ज़रूरी होते हैं, मतलब माँ बाप, लेकिन ज़रूरी नहीं कि भाई बहन हो, कोई अकलौता बच्चा भी हो सकता है। कोई एक भी रिश्ता नहीं होगा ना, तो उसका माँ और बाप का रिश्ता ज़रूर होगा, इवन अगर बाप बच्चे के दुनिया में आने से पहले फौत भी हो जाए, लेकिन ये हो नहीं सकता ईसा के अलावा कि किसी को बिन बाप के पैदा किया जाए। इस्लाम चाहता है कि इन सारों के हकूक दिए जाएं, तो थोड़ा सा इस्लाम का निज़ाम हकूक समझिएगा। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी का कुछ इस तरह से हिसाब बनाया है कि हर बंदा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है और कुछ चीज़ों को हासिल भी करता है, यानी हकूक और फ़राइज़ क्या है? कुछ दो कुछ लो, गिव एंड टेक, इसको समझ लीजिए। सबसे पहला ताल्लुक़ या रिश्ता तो है हमारा अपने रब से, फिर नबी से, फिर अल्लाह की किताब से, ठीक है, इसी से फिर जिम्मेदारियां भी हैं। फिर इसी तरह से इंसान का ताल्लुक़ जब इंसानों में पड़ता है तो याद रखिए ख़ानदान, ख़ानदान की बुनियाद पड़ती है माँ और बाप से। दो मुख्तलिफ़ ख़ानदानों का जोड़ मिलता है किसी लड़के और लड़की के निकाह की सूरत में, तो क्या पता चला कि जब दुनिया में आकर हम इंसानों के हकूक़ देने की कोशिश करते हैं तो हमारे ऊपर सबसे पहले हकूक़ रिश्तेदारियों के। इसको सिला रहमी कहते हैं, जोड़ना रिश्तों को, सिला जोड़ना वसल से, और रहम यूट्रस वोम, इसी से अल्लाह ताला का नाम अर रहमान और अर रहीम भी है, अरहम भी है। क्या पता चला कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना ये दीन का हिस्सा है, बहुत बड़ा इसका किरदार है। अब हम सब पर अपने माँ बाप, औलाद, भाई बहनों, जौजैन, रिश्तेदारों की कुछ जिम्मेदारियाँ भी आती हैं और कुछ हमारे उन पर हकूक भी हैं। अल्लाह ताला ने आपको मुझे ये सब कुछ देकर क्या करने को कहा है? ना तुम किसी का हक मारो और ना कोई तुम्हारा हक मारे। जितना ज्यादा आप किसी का हक देंगे, अल्लाह किसी दूसरे को भेज देगा जो आपका हक देगा। क्योंकि जब तक आप और मैं अपने काम नहीं करेंगे, दूसरों का हक उनको नहीं देंगे, अल्लाह ताला हमारे हकूक को ख़त्म करवा देगा। अब आप देखिए कि ये सारी किस्में जो रिश्तों की हैं, इसको किसी भी सूरत में किसको तोड़ सकते हैं और किसको नहीं तोड़ सकते। नंबर एक, नस्बी रिश्तों को नहीं तोड़ सकते। इसीलिए इस्लाम में आक करने का हुक्म नहीं है। आक एक बड़ी मारूफ इस्तलाह है, आप सभी सुनते जानते हैं, पढ़ते भी होंगे, कि बच्चे को किसी वजह से, जायदाद से और जो उसको अल्लाह ताला ने चीज़ें दी उससे महरूम कर देना। इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं। अब एक सवाल है जो बहुत ही तकलीफ़ से कह रही हूँ कि बच्चा दीन छोड़ दे, तो वो और बात है। मुर्तद को हक नहीं मिलेगा, क्योंकि मुर्तद होना तो सारी रूल्स एंड रेगुलेशन से अपने आप को निकालना है। फिर इसी तरह कोई बच्चा अपने माँ बाप नहीं बदल सकता, बुरे लगें, कुफर पे हैं। इवन आपने देखा है सीरत में भी और सहाबियात की भी ज़िंदगी में, सहाबा की भी, कि माँ बाप कुफर पे थे लेकिन माँ बाप से ताल्लुक़ नहीं टूटा। हत्ता कि माँ बाप और औलाद का रिश्ता ऐसा है, वो शोहर बीवी जिनके साथ रहने से ये रिश्ता बना, अगर वो साथ ना भी रहे, समझ गए, तलाक, फिर भी ये रिश्ता नहीं टूटता। यानी बच्चों की बाप से कभी तलाक नहीं हुई या बच्चों की कभी माँ से नहीं हुई। तो क्या पता चला कि सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स कोई अगर दे सकता है तो वो इस्लाम है। आज पूरी दुनिया में जो एक शोर व गुल है राइट्स एंड रेगुलेशंस, आप बग़ैर शादी के और बग़ैर किसी लायबिलिटी के एक बच्चे को दुनिया में आने की इजाज़त देकर असल में एक इंसान का सबसे बड़ा हक छीन रहे हैं। और वो क्या, कि वो बच्चा रिश्तों की मोहब्बतों से महरूम रहता है। आज आप देखिए इतनी सुसाइड क्यों है, फ्रस्ट्रेशन क्यों है, आज सोसाइटीज़ में ये सारी खराबियाँ क्यों हैं, ये एक अपनी जगह मुस्तकिल टॉपिक है। एक सिक्योर माहौल में पैदा होने वाला बच्चा एक अच्छा शहरी होता है, इसको तो सभी लोग कर चुके हैं। तो जब हम देखते हैं कि हकूक और फ़राइज़ की ये बात है, तो सबसे पहला हक अगर हम इंसानों में देखें तो वो माँ बाप का हक है। कुरान पाक में तीन मुकाम तो मुझे भी याद हैं, इससे एक्स्ट्रा और भी हो सकते हैं डेफिनेटली, कि जहाँ अल्लाह ने अपने हक के बाद माँ बाप के हक की बात की है। क्या पता चला कि मखलूक में से सबसे पहला हक माँ बाप का है। तो आइए ज़रा थोड़ी सी इस पे बात करते हैं। बहुत कुछ है इस पे, डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, सिर्फ चंक्स लिखाऊंगी कैटेगराइज करके, क्योंकि आप इंशाल्लाह जितना कुछ इस पे जानते हैं ना, अभी आज जो मैं हेडिंग्स दूंगी ना, सिर्फ हेडिंग्स को आप करें तो ये एक आपका पूरा माइंड मैप बनेगा। डिटेल्स इस पे बहुत हैं, मेरे माँ बाप मेरी जन्नत या जहन्नुम, फिर इसी तरह से माँ की दुआ जन्नत की हवा, और इस पे तो बेशुमार चीज़ें, और हर आयत जिसमें माँ बाप की बात है, ख़ासतौर पर सूरह बनी इसराइल, रब इरहम हुमा कमा रबयानी सगीरा, तो इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लेकिन इस वक्त हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सिर्फ एहसास को भरेंगे कि हम इसको क्या समझते हैं। एक असूल लिख लीजिए, यही जो बात लिख रहे हैं ना, इस्लाम में जो निज़ाम हकूक है, इसमें एक असूल लिख लीजिए, जिसने जितनी तकलीफ़ सही उसका उतना हक है। ठीक है, माँ पेट में रखती है 9 महीने तकरीबन, जान पे खेल कर पैदा करती है, फिर 2 साल तक दूध पिलाती है। बाप क्या करता है, हिफाजत और किफालत करता है, मेहनत करता है, तो माँ का हक बाप से 3 गुना ज़्यादा है। अब ये हक क्या है, कितना है, इसको नहीं बहुत सारे लोग समझते। आज मैं असल में इस पे थोड़ा सा आपकी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि दीन सीखने के बाद सबसे पहला फ़िक्र और गम ये लग जाता है कि अब हम अपने माँ बाप को कैसे टेक केयर करें और क्या पूछें। तो याद रखिए, हुस्ने सलूक का हक माँ बाप के साथ, इसमें तो नो ऑप्शन एट ऑल, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इवन बाप गलत काम भी करता है तो भी हुस्ने सलूक तो उसके साथ होगा। ठीक है, फिर दूसरी बात जो है वो आगे आती है। तो हम वालदैन के हकूक को अगर 2 हिस्सों में बांट लें, नंबर एक उनकी ज़िंदगी में इनके क्या हकूक हैं, और दूसरे उनकी वफ़ात के बाद क्या हकूक है, तो ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देंगे। अब जो ज़िंदगी के हकूक है ना, इसको फिर 2 हिस्सों में बांटे, फिर समझ आएगी। ठीक है, बल्कि इसकी कुछ ना कुछ पिक्चर आपको किसी ना कहीं बना के दे देंगे माइंड मैप की। पहली बात, दो हकूक, जिंदगी के और जिंदगी के बाद। आप चल रहे हैं जिंदगी के हकूक, इसमें फिर दो हक हैं। नंबर एक, उनसे हुस्ने सुलूक, अदब और एहतराम, और दूसरा है माँ बाप की इताअत करना। याद रखिए, ये दोनों दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग हुस्ने सलूक और इताअत में फ़र्क नहीं कर पाते। फिर सवाल करते हैं, अच्छा माँ कहे कि तलाक दे दो तो दे देंगे, और बाप कहता है ये करो, माँ कुछ और कहती है तो क्या करे। तो इंशाल्लाह दोनों को देख लेते हैं। पहली बात है कि वालदैन के साथ हुस्ने सलूक, नोट कीजिएगा, अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करें। दलाइल लिख लीजिए, सूरत बकरा 83, निसा 36, अल अनाम 157 और लुकमान 14। दूसरा क्या है कि अल्लाह के बाद माँ बाप का हक बड़ा है, सूरत बकरा 83। और तीसरी बात है कि माँ का हक ज़्यादा है क्योंकि उसने कमज़ोरियों पे कमज़ोरियाँ छीली, सूरत लुकमान 14 और बनी इसराइल 24:22। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुछ कहा है, तो चंद अहादीस को नोट कीजिएगा। नंबर एक, बुखारी 527, मुस्लिम 252। वालदैन से हुस्ने सलूक अल्लाह का महबूब अमल है, अल्लाह ताला को ये अमल बहुत पसंद है। फिर बुखारी 5971 और मुस्लिम 6500। माँ के साथ हुस्ने सलूक में बाप के ऊपर तरजीह देनी चाहिए, यानी माँ का ज़्यादा हक है। फिर तीसरी बात है, वालिद की रज़ा में रब की रज़ा है, तिरमिज़ी 1899। फिर बाप जन्नत का दरवाज़ा है, इब्ने माजा 3663 सही रिवायत है और तिरमिज़ी 1900। फिर वालदैन से हुस्ने सलूक गुनाहों का कफ़ारा है, जी गुनाह हो जाएं तो कफ़ारे में माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक कीजिए, ये भी सही तरगीब 2504 और तिरमिज़ी 1904। फिर अगली बात है कि औलाद के लिए माँ बाप की दुआएं कबूल होती हैं, तिरमिज़ी 1905 और अबू दाऊद 1536। अगली तो बहुत ही खूबसूरत बात है, और वो क्या कि वालदैन से हुस्ने सलूक उम्र और रिस्क में इजाफे का सबब बनता है, सही तरगीब 2488 और तिरमिज़ी 2139। और अगली बात, वालदैन की नाफरमानी कबीरा गुना है, मुस्लिम 259 और बुखारी 6273। अब ये तो थी कुरानी आयत और अहादीस। सवाल पैदा होता है कि माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक अमली तौर पे कैसे करें, प्रैक्टिकल टिप्स। इसके नोट कीजिएगा, पॉइंट नंबर एक, शुक्रगुजारी। सबसे बड़ा हुस्ने सलूक आपका मेरा अपने वालदैन के लिए क्या है कि हम उनके शुक्रगुजार हों, वी शुड बी थैंकफुल टू देम। दिल में उनके इन एहसानात का एहसास हो, ज़ुबान से इजहार करें उनको शुक्रिया बोलकर, और आज़ा से उनकी खिदमत और इताअत करके। अब शुक्रगुजारी के फिर तीन दर्जे। नंबर एक, दिल से। आप अपने दिल से अपने माँ बाप को काबिले कदर समझिए, बाकी सारे काम आसान हो जाएंगे। याद रखिए कि शुक्रगुजारी वो बीज है जिधर से फिर इताअत और फरमाबरदारी का पौधा लगता है। जब तक आप किसी को अपना मोहसिन नहीं समझेंगे, आप उसकी बात नहीं मानेंगे। एक गिलास पानी नहीं किसी को आप पिला सकते अगर आप उसको मोहसिन नहीं समझेंगे। फिर इसी तरह ज़ुबान से शुक्रगुजारी क्या है कि उनको खुद भी कहिए, बोलिए उनके सामने। बाज़ दफ़ा हम सबके सामने बोलते हैं, उनके सामने नहीं बोलते। और अज़ा के साथ तो फिर वही बात है कि उनकी खिदमत करना। तो दूसरी चीज़ फिर उनकी क्या है, खिदमत करना। अल्लाह के नबी की रिवायत सही मुस्लिम 6511, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो गई जिसने वालदैन दोनों या एक को बुढ़ापे में पाया और खिदमत करके जन्नत में ना गया। नोट कीजिए, ये सारी बातें भी खिदमत की हो रही हैं। फिर इसी तरह से माँ बाप की खिदमत करने से मुसीबतें दूर होती हैं। याद है गार में फंसे हुए लोगों का वाकया, जी बुखारी 2215 और मुस्लिम 6949। तीसरा उनके साथ हुस्ने सलूक क्या है, खुश रखिए, उनको खुश करिए, क्योंकि माँ बाप को अमली तौर पे खुश करने के लिए याद रखिए पैसों की तोहफों की ज़रूरत नहीं होती। माँ बाप को जज्बाती तौर पे खुश रखना, उनको वक्त दें, उनसे बैठकर बात करें, दूर हैं तो फ़ोन पे बात करें, कोई नहीं रोकता आपको, अब सारा दिन अपने माँ बाप से बात कर लें अगर आप फारिग हैं। फिर इसी तरह आप उनसे बचपन की बातें सुने, आप कैसे थे, वो इतने ज़्यादा इस पर खुश होंगे कि आप उसको महसूस करेंगे कि उनके चेहरे पर एक चमक आने लगती है फिर इसी तरह से उनको खुश करें। कैसे? नंबर एक, शिकवा शिकायत ना करें, कंप्लेंट्स ना करें, आपने तो मुझे सही पाला ही नहीं है। फिर उनसे मुतालबात ना करें और उनके बारे में बदगुमान ना हो। जब हमारी ज़ुबानें लंबी होती हैं ना, तो जिन्होंने हमें बोलना सिखाया, हम उन्हीं के आगे बदतमीज़ी से बोलते हैं, ये ना करें। फिर चौथा तरीका है हुस्न सलूक का, उन पर माल खर्च कीजिए। माँ बाप के साथ अच्छी बातें करना ही काफ़ी नहीं है, माल खर्च कीजिए। माँ बाप के साथ अक्सर लोग बुखल करते हैं, सोचते हैं कि इन्होंने क्या देना है, अब इनको क्या मिलना है। और जैसे कहते हैं ना कि पौधों पे तो सब लगाते हैं क्योंकि बड़े होके उन्होंने फल देना है, तो बूढ़े दरख्तों पे क्या लगाएं, उधर से तो कोई फल भी नहीं आना। इस तरह ना कीजिए। आप उनको माल देंगे, वो सदका कर देंगे। लोग कहते हैं इनको दिया तो ये दूसरों को दे देंगे, तो याद रखिए सिलसिला सहीहा की रिवायत है 2564, जिसमें ये बताया जाता है कि माँ बाप के ऊपर खर्च करना चाहिए। फिर अगला हक हमारे इनके साथ हुस्ने सलूक है कि वालदैन के रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक करें। हैं तो वो आपके भी, आपकी नानी है ना, लेकिन आप कहें नहीं, ये मेरी अम्मी की अम्मी है, ये आपके चचा है, नहीं ये मेरे बाप के भाई हैं। तो रिश्तेदारों के साथ रखें। फिर अगला हुस्ने सलूक क्या करें, आजजी से पेश आए, बी हम्बल, बनी इसराइल 24। अब आजजी से पेश आना, जिसको सूरह बनी इसराइल में क्या कहा, वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह मिनज़ुल्ली, एक आयत है ना, घर जाके देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5 से 10 नुक्ते लिखाती हैं आपको सिर्फ एक आयत में से, माँ बाप के साथ आजजी के। आयत वही है जो आप सबको आती है, वकुर रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। नंबर एक, इनके सामने अकड़ कर ना बैठे, पोस्चर भी बता दिया, वख़्फ़िज़ लहुमा, कंधे झुकाओ। फिर इन पर एहसान ना जतलाएं, मुंह फेर कर बात ना करें, जो आपके दिल में आए इनको फौरन रिमार्क्स ना दे दें, मूड ऑफ ना करें, तेवरी ना चढ़ाएं, इनकी गलतियों और कमजोरियों पर इन्हें शर्मिंदा ना करें। अब ये बूढ़े दरख्त हैं, ये नहीं बदलेंगे, आपको बदलना पड़ेगा। फिर इन पर तनकीद ना करें, इनके सामने कंधे ना उचकाएं, इन पर अपनी मर्जी ना मुसल्लत करें, और इनको बात बात पर समझाएं भी नहीं। अब ये नहीं समझेंगे, हम अपने माँ बाप की तरबियत नहीं कर सकते, वो करनी है तो अपने बच्चों की कीजिए। फिर इसी तरह अगला हक है कि इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें, और ख्याल वही रखता है जिसको पता हो कि ज़रूरियात है क्या। आप देखिए, हमारी अपनी छोटी छोटी पर्सनल नीड्स होती हैं ना, तो माँ बाप की भी होती हैं। बस इतना बुखल करते हैं कि माँ बाप की दवाइयाँ तक लेने के लिए उनको कितनी मिन्नतें समाजतें करनी पड़ती हैं, और इसी तरह की चीज़ें। फिर इसके बाद अगला हक जो आप माँ बाप की ज़िंदगी में कर सकते हैं, वो क्या कि उनको वक्त दीजिए। बूढ़े माँ बाप को औलाद का वक्त चाहिए होता है, आते हुए जाते हुए जितनी देर बैठ सकते हैं। और वही बात कि अब आप कहेंगे हमारे माँ बाप तो इधर नहीं है, तो फ़ोन कीजिए, आप उनको स्काइप पे कॉल कीजिए, आप उनको फेस टाइम पे देख लीजिए, सुबह शाम देख लें एक एक मिनट के लिए, वो इतने में भी बहुत खुश हो जाएंगे। फिर इसी तरह से अगला हक है कि इनकी जज्बाती निगहदाश्त करें, इमोशनली टेक केयर करें इनकी। आप देखिए, कुव्वत की कमी होती है तो निढाल हो जाते हैं, तो बच्चे भी छोटे छोटे बात बात पर रोते हैं ना, कभी गिरने लगते हैं, चलते नहीं हैं, बुरा भला कहें तो रोने लगते हैं, माँ बाप भी ऐसे हो जाते हैं। आप इनको भी अपने हाथ से खिला सकते हैं, आप अगर ये खाते हुए खाना नीचे गिरा देते हैं तो कोई बात नहीं, आप इनको साफ़ कर दें, इनके लिए इनकी पसंद के कपड़े बनाएं, अगर उनको अच्छे रंग अच्छे लगते हैं तो अच्छे रंग लेकर दें, अगर उनको कोई जूता अच्छा लगता है वो ले दीजिए, ये कहना बूढ़े हो गए हैं अब इनकी उम्र नहीं रही है कपड़े पहनने की, अब ये ज्वेलरी कैसे पहनेंगे, अगर उनको अच्छी लगती है तो ले दीजिए। बाप हैं, अगर उनको अच्छे फ़ोन का शौक़ है तो आपने जो एक अच्छा फ़ोन लिया है तो आप अपने बाप को भी दिला सकते हैं। फिर इसी तरह अगला इनका हक है, मोहब्बत का इजहार कीजिए, एक्सप्रेशंस दीजिए। हम मोहब्बत तो करते होते हैं, इजहार नहीं करते, शर्म आती है, झिझक है, शुरू से आदत ही ना पड़ी, तो आप इसको भी नेकी समझ कर कीजिए। फिर इसके बाद जो है कि इनके लिए दुआ करें, वक़ुर रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, बनी इसराइल 24, और सूरह इब्राहिम 41 किसको आती है, रब्बना अग़फिर ली वली वालिदैय वलिल मुमिनीन यौम यकूमुल हिसाब। फिर इसी तरह से आप देखिए कि दुआएं मांगे, आप अपने लिए कोई दुआ करते हैं, मैं आपको एक छोटी सी सोच देना चाहती हूँ, बस बाकी जिसको जो समझ आए वो करे। देखिए, आपने कुछ मांगा है, मिसाल देती हूँ कि आपको कुछ नेमत मिल गई, किसको खुशी होगी सबसे ज़्यादा? आपको कहते कि हमारी नेमतों पे हमसे ज़्यादा हमारे माँ बाप को खुशी होती है। तो आपने मांगा अपने लिए कुछ, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि अल्लाह मेरी माँ को मेरे बाप को ये चीज़ दिखा दे मेरी, बात समझ गए। कहते हैं कि एक माँ थी तो उसको किसी ने कहा कि एक दुआ मांग लो, बूढ़ी थी यानी, एक माँ थी तो उसका बेटा था पर उसकी औलाद नहीं थी, बेटे के पास जॉब भी नहीं थी, गुर्बत थी और जो कुछ भी होता है, और घर भी नहीं था। तो उस बूढ़ी औरत को किसी ने कहा कि बस तुम एक दुआ मांग लो, तो उसने क्या मांगा, और वो माँ नाबीना भी थी, तो उसने कहा कि अल्लाह मैं अपनी आंखों से अपने बच्चे के बच्चे को दौलत में अपने घर में पलता फूलता देखना चाहती हूँ, आप इसको जितना मर्जी आगे बढ़ा लीजिए। उसने एक दुआ में अपनी लंबी उम्र भी मांग ली, आंखें भी मांग ली, बच्चे के लिए औलाद भी मांग ली, उस औलाद का बड़ा होना भी मांग लिया और उसका फलता फूलना भी देख लिया। माँ बाप ऐसे ही होते हैं। और किसी ने कहा कि अगर कोई किसी को एक दुआ का हक दे दे कि एक दुआ मांग लो तो क्या मांगोगे, तो किसी माँ ने कहा कि मैं अपने बच्चे का मुकद्दर खुद लिखूंगी। हालांकि ये गलत है, जो अल्लाह ने आपका मेरा मुकद्दर लिखा हमारे माँ बाप ऐसा नहीं लिख सकते, ये याद रखिए। तो क्या करना है, इनके लिए आजिज़ भी रहना है, मोहब्बत भी करनी है, फिर सबसे बड़ी बात कि इनका अदब और एहतराम, बी हम्बल, आजिज़ रहना है, उफ़ नहीं कहना, उकताहट का इजहार नहीं करना, बार बार बात करें बार बार सुने, कोई बात नहीं है, इस ओके, बोर नहीं होना, फिर इनको डांटना तो बिल्कुल नहीं है, फिर इनके साथ नरमी से बात करें। और एहतराम के कुछ अमली पहलू भी हैं, आवाज़ ऊंची ना रखें, आगे ना चलें, तवाज़ो रखें, इनका बिस्तर दुरुस्त कर दें, एहतराम से उठाएं बिठाएं, ये नहीं कि खिदमत कर भी रहे हैं और बुड़बुड़ा भी रहे हैं, चाय भी दे रहे हैं तो इस तरह पटख के देने वाला अंदाज़ है, आपको तो पता नहीं क्या है, आप तो खुश नहीं, ये वो, जो कर सकते हैं कर लें, याद रखें ये जन्नत है। बैठे हैं तो तकिया दे दें, खड़े हैं तो उनके जूता आगे रख दें, इनकी बात ना काटें, अपने दिन का आगाज़ इनके खाने पीने से कीजिए, इनकी राय पे अपनी राय को फोकियत ना दें, ना माने बात वो अलग बात अभी आने लगी है, लेकिन यह है कि आप उनकी बात सुन ज़रूर लें, अच्छे अल्फाज के साथ बोलें, अपने हाथ से खिलाएं, और इसी तरह से अपने बीवी बच्चों पे, शौहर पे, उनको इस तरह फोकियत ना दे कि उनको बुरा लगने लगे। अगर इनमें कोई नेगेटिव आदत है तो कोशिश करें कि वो छोड़ दें, अगर नहीं छोड़ पाते तो उसको इग्नोर कीजिए। फिर इसी तरह से आप देखिए कि ये तो है फिजिकल हेल्प जो आपको मुझे करनी है, अब सेकंड हक क्या था उनकी ज़िंदगी में, इतात, इसको समझिएगा। आप देखिए कि इतात में बहुत सारे लोग गड़बड़ कर पाते हैं, उसको समझना चाहिए। तो एक बात याद रखिए कि माँ बाप की इतात एक मुस्तकिल अमल है, शादी के होने या शादी के ना होने से इसका ताल्लुक नहीं है। कोई बात जो अल्लाह के साथ शिर्क या उसकी नाफरमानी की ना हो, इसके अलावा उनकी बात मानी जाएगी। लुकमान 15 और बुखारी 7135 और मुस्लिम 1840, इस पे चंद बातें, सही मुस्लिम 6510, माँ बाप की फरमाबरदारी जन्नत का मुस्तहिक बनाती है इंसान को, और माँ बाप की फरमाबरदारी एक महबूब अमल है, माँ बाप की फरमाबरदारी से मुसीबतें दूर होती हैं, सही बुखारी की रिवायत है 2215। और औलाद अपने वालिद के एहसानात पूरे कर नहीं सकती इल्ला ये कि उसे ग़ुलाम पाएं और ख़रीद कर आज़ाद कर दें, ये सही मुस्लिम की हदीस का खुलासा है 3799। यानी हम अपने माँ बाप के हक़ दे नहीं सकते, जो औलादे नाफरमान हैं तो वो भी चंद बातें नोट कर लें। बुखारी 5975, माँ बाप की नाफरमानी, उकूक कहते हैं उसको, जैसे हकूक है ना, आइन डाल दीजिए, उकूकुल उम्महात का भी लफ्ज़ है, हराम है ये। फिर माँ बाप की नाफरमानी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, निसाई 2562, कबीरा गुनाह है ये, बुखारी 5978। और जिब्राइल की भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुश्तरका बददुआ है ऐसे शख्स के लिए, ये रिवायत भी सब ने रमज़ान के लेक्चर्स में सुनी होगी, सही उत्तरगीब 2492। और माँ बाप के नाफरमान की फ़र्ज़ इबादतें भी नहीं कबूल होती और नफिल भी कबूल नहीं होते, सही अतरगीब 2513। आप बताइए, नेकियों के पहाड़ बनते जाएं फिर भी कबूल नहीं होंगे, फिर माँ बाप का नाफरमान दुनिया में भी जलील होता है, सही मुस्लिम 6510। क्या पता चला कि अल्लाह ऐसे कामों के लिए आखरत का इंतज़ार नहीं करता, दुनिया में उसको पकड़ लेता है। फिर कबीरा गुनाह है कि अपने बाप को कोई गाली दे, बुखारी 5973। वालदैन का नाफरमान जन्नत की खुशबू से महरूम रहेगा, जो 500 साल से पहुंच रही होगी दूर, यानी 500 साल अभी दूर होंगे जन्नत से, तो उसकी खुशबू आएगी, तबरानी की रिवायत है। और इसी तरह से जो बूढ़े वालदैन को पाए और फिर जन्नत हासिल करने में कोताही करे, उस पर लानत है। ये रिवायात सारी सुनने के बाद एक इंसान थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्या करूं, कैसे करूं, किस तरह। तो याद रखिएगा कि माँ बाप की खिदमत और अदब और एहतराम में नो ऑप्शन एट ऑल। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि माँ बाप गलत बात कहते हैं, तो वहाँ फिर वही असूल है, ला तातल ली मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। शादी के बाद ख़ास तौर पे औरतों के लिए एक बहुत बिग चैलेंज है कि शौहर की बात माने के माँ बाप की, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। इसमें याद रखिएगा कि तकाबुल कोई नहीं है, पहली बात है कि ईदर और नहीं है, या आप शौहर की माने या माँ बाप की माने। अच्छे ताल्लुकात जब घरों में होते हैं ना, तो ये ऑप्शन आता ही नहीं है। आप अपने घर में आपके शौहर के माल की आप मालिक हैं, आपके माँ बाप की फ़िज़िकल खिदमत कर दीजिए अगर पास हैं, अगर शौहर इजाज़त देते हैं आप उस पर माल भी खर्च कर सकती हैं, लेकिन घरों में ऐसी बातों को इशू नहीं बनाना चाहिए। मैं अक्सर कहती हूँ कि ये जो हकूक़ का पर्चा है ना जो आजकल हम पढ़ रहे हैं, ये फतवों से नहीं आता। अच्छा जी, क्या जायज़ है क्या नहीं, अच्छा सास की खिदमत करें कि नहीं, अच्छा माँ को ये करे ना करे वो करे, ये तकवा की बातें। कुछ चीज़ें तकवा की तराजू में तोलेंगे तो बात समझ आ जाएगी। फिर इस तरह याद रखिए कि जुरैच नाम का एक शख्स था, आपने वाक्या सुना होगा कि किस तरीके से वो इबादत करता था, और उसकी माँ जब उसके पास आती तो उस वक़्त इबादत की वजह से वो बात नहीं कर पाया, तो माँ बद्दुआ दे गई कि तुझे मौत ना आए जब तक किसी फाहिशा का मुँह ना देख लो। एक दिन अपने जो भी उन्होंने झोंपड़ा बनाया हुआ था उसके बाहर आवाज़ें आईं, तो देखा एक औरत गोद में बच्चा लिए फिर रही है। लोग पूछ रहे हैं बता ये किसका बच्चा है, इनको देखकर कहने लगी इसका बच्चा। अब ये परेशान है, लोगों ने इनको मारना शुरू कर दिया, जो भी किया सो किया। बच्चा बोल उठा कि नहीं, मैं इसका नहीं बल्कि फलां गडरिए का बच्चा हूँ, शेफर्ड का। लोगों को शर्मिंदगी हुई, दोबारा माफ़ियाँ मांगने लगे, कहने लगे कि आप हमें माफ़ कर दें। कहने लगे नहीं, तुम जाओ, बस जैसा था वैसा दोबारा मेरा हुजरा बना दो, क्यों, ये मेरी माँ की बद्दुआ है। और इस पे किसी का कमेंट है कि आज भी जो फ़ोहश औरतों के मुंह देखते रहते हैं दिन रात बैठकर, वो माओ की बद्दुआओं का शिकार हुए हैं। तो याद रखिएगा कि माँ बाप को नाराज़ तो नहीं करना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि माँ बाप की इताअत किन कामों में, तो इस पे रेफरेंसेस नोट कर लीजिए। पहली बात है सिर्फ मारूफ कामों में, सही कामों में, सूरह अनकबूत आयत 8 और बुखारी 4340। अब निकाह की बात लेते हैं, चलिए वन बाय वन एक दो पॉइंट्स देख लेते हैं। शादी के लिए क्या माँ बाप की बात मानना ज़रूरी है, तो इसको समझ लीजिएगा। आप देखिए कि लड़के और लड़की के लिए असूल यहाँ मुख्तलिफ है। लड़का बालिग होने के बाद खुद मुख्तार है, शरण कोई रुकावट ना हो तो वो शादी कर सकता है। हुस्ने सलूक का ये तकाजा है कि वो अपने माँ बाप से मशवरा करे, उनको साथ शामिल करे, लेकिन अगर वो ना भी करें तो उसको गुनाह नहीं है। जबकि लड़की को वली की ज़रूरत है और वो उसके बगैर निकाह नहीं कर सकती। ला निकाहुन इल्ला बिवलीयुन, निकाह नहीं होता मगर वली के बगैर। अबू दाऊद की सही रिवायत है 1836। फिर इसी तरह से आप देखिए कि लड़की निकाह के लिए राज़ी ना हो तो माँ बाप निकाह कर दें, फिर क्या होगा, लड़की को इख्तियार है, चाहे उस निकाह को हो जाएगा। फ़र्क समझ लें, लड़की माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर निकाह करेगी तो नहीं होगा, कोर्ट मैरिज इस्लाम में नहीं है। वो जिना होगा, अगर उससे बच्चे पैदा हुए तो वो वलदु जिना होंगे, ठीक है, वो तो होगा ही नहीं। माँ बाप कर दें ज़बरदस्ती, हो जाएगा, बट लड़की को चॉइस मौजूद है कि वो अगर तोड़वाना चाहे, खुला लेना चाहे, तो वो लड़की फिर गुनाहगार नहीं होगी। तो माँ बाप को क्या चाहिए कि अपने बच्चे बच्चियों के निकाह या रिश्ते अच्छी तरह से ढूंढें, और इसमें एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना चाहिए। अगला सवाल है तलाक का, ये बड़ा हमारे कल्चर में मारूफ है, क्या तलाक देने के लिए भी माँ बाप की ज़रूरत है कि नहीं। तो याद रखें कि माँ बाप अपने बेटे को, अपनी बीवी को तलाक देने पर मजबूर करें तो उसकी शरायत है। नंबर एक है कि बीवी का मेल जोल गैर मर्दों से हो, गैर मर्दों में हो, अखलाकी एतबार में बुरी हो और दीन के एतबार से बुरी हो। देखिए हज़रत इब्राहिम की मिसाल लोग देते हैं कि उन्होंने अपने बेटे इस्माइल को कहा कि अपनी चौखट बदल लो, बेटा भी नबी था बाप भी नबी था, मिसालें कायम करनी होती हैं। आम हालात में ऐसा नहीं होता। माँ बाप अगर किसी के साथ ऐसी बात करे तो उसके पास कोई रीज़न होनी चाहिए। अब देखिए कि जब कुछ इस तरह के हालात होते हैं, मसलन इब्ने उमर के मामले में हज़रत उमर ने अल्लाह के नबी से ये अर्ज़ किया था कि अब्दुल्ला ने ऐसी औरत से निकाह कर लिया जिससे मैं नापसंद करता हूँ। अब कर लिया ना, तो हज़रत उमर नापसंद कर रहे हैं, इट्स ओके लेकिन निकाह हो गया। मुस्नद अहमद की रिवायत है ये 5011। अब ये सारी बातों को जो कॉन्ट्राडिक्शन आता है जमा कर लीजिए, तो आज की जो दारुल उफ्ता कमेटी है सऊदी अरब की, उनका फतवा मैं एज इट इज़ पढ़ के सुना देती हूँ। कहते हैं कि अगर बीवी के हालात दुरुस्त हैं और शौहर उससे मोहब्बत भी करता है और वो ना तो आपके माँ बाप की नाफरमानी करती है, सिर्फ नापसंदीदगी की वजह से अगर माँ कहती है मर्द को कि अपनी बीवी को तलाक दे दो, तो फिर शौहर पे लाजिम नहीं है कि अपनी माँ की बात सुनकर बीवी को तलाक दे। वरना तो देखिए सारे घरों में तलाक़ें हो जाएं, सीधी सी बात है, इल्ला माशाल्लाह। ठीक है, तो ऐसे मामलात में फिर वही बात है कि करें। अब अगला काम है हज। हज पे जाएं तो क्या माँ बाप की इताअत करें कि नहीं करें? तो याद रखिए कि फ़र्ज़ हज से माँ बाप नहीं रोक सकते, रोकेंगे तो गुनाहगार होंगे। हाँ, नफली हज से रोक सकते हैं। अगर वालदैन रोके तो फिर एक इंसान ना करे, माँ बाप गुनाहगार होंगे। अगर बिला वजह रोकेंगे तो वो गुनाहगार है, लेकिन नफली हज से फिर इंसान रुक जाएगा। अब अगला अमल ये है कि माँ बाप किसी ऐसे काम का कहते हैं बच्चों को या बच्ची को जिसमें शरीयत की हदें टूटती हैं। मसलन किसी ऐसी जगह बेटी को माँ बाप मजबूर करते हैं कि जाओ जॉब करो कि जहाँ मर्द भी हैं, बेपर्दगी पे। चले इसको बेपर्दगी पे ले लीजिए। अब एक लड़की अपने माँ बाप की या दोनों में से किसी एक की बात जो है वो मानती है कि वो गलत काम करे, तो अब क्या करे? देखिए अल्लाह का हक बड़ा है कि बंदों का? अल्लाह का बड़ा है ना। ये कैसे हो सकता है कि आप अपने ही रिश्तों का नाम लेकर अल्लाह ताला को नाराज़ कर दें? हमेशा याद रखे ऐसी बातों पे जमा तफरीक में नहीं पड़ना चाहिए, बी रिलैक्स्ड। मैं हमेशा ऐसे सवाल जिसमें ज़रा सा कोई फिकी फ़र्क आने लगता है ना, एफ्स एंड बर्ड्स, मतलब हो सकता है मैंने आपको कुछ और कहा है, आपने कहीं कुछ और सुना पड़ा है, आप उसको मान लें, आपकी मर्जी है। मुझे इतना पता है कि इन बातों की हर वक्त ज़रूरत पड़ती ही नहीं, ना आपको पड़ती है ना मुझे पड़ती है। कोई ऐसा काम माँ बाप को भी समझा लीजिए, मामा ये अच्छा नहीं है, बाबा ये अच्छा नहीं है। और बाज़ दफ़ा हम उनकी गलत बातों को सिर्फ इसलिए नहीं बोलते आगे से या समझाते कि वो हमें बुरा कहेंगे, लेकिन वो मुस्तकिल बुरे बन रहे होते हैं हमारी सोच में, मुआशरे में, दूसरे में। अब अगला सवाल है, जिहाद के लिए जा रहे हैं तो वालदैन की इजाज़त ज़रूरी है कि नहीं? जब जिहाद फ़र्ज़ आइन होगा तो ज़रूरी नहीं है, और किफ़ाया होगा तो पूछना बेहतर है। बुखारी की रिवायत 527 और मुस्लिम 252। अगला सवाल है इतात में कि माँ बाप माल तलब करते हैं आपके शौहर को, उनकी माँ कहती है मुझे $1,000 दो, अब क्या करे बेटा? तो क्या करे? नंबर एक, वालिद, इसमें फ़र्क है माँ और बाप का। वालिद बेटे के माल में से वो ले सकता है जो उसकी ज़रूरत है। अंत व मालुका ली अबी का हदीस के अल्फाज है और मुख्तलिफ जगहों पर हदीसें मौजूद हैं, अबू दाऊद में 3015 भी है। अगर बाप अपने बेटे के माल में से अपनी ज़रूरत की चीज़ लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन अब वो ये तो नहीं कर सकता कि उसके पैसे औलाद के भी ले ले। देखिए हर एक के माँ बाप अच्छे भी नहीं होते, चोरों के भी तो बच्चे हैं ना दुनिया में, और इसी तरह बदकारों और जानियों की भी बेटियां हैं। तो ये सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो इसमें यह है कि माँ बाप की ज़रूरत पूरी कर दीजिए और उसके बाद फिर वो अगर ज़्यादा बात हो तो उसको अच्छे तरीके से लिया जाए। अब आखिरी टॉपिक रह गया कि माँ बाप दुनिया से चले गए, अब क्या किया जाए, इनके क्या हकूक़ हैं? तो नोट कीजिएगा, नंबर एक, माँ बाप की मौत तक उनसे हुस्ने सलूक करते रहिए। अब जा रहे हैं दुनिया से तो उनके लिए अच्छे तरीके से तजहीज़ो तकफ़ीन का काम कीजिए, उनके कर्ज़ों को अदा कीजिए, उनकी वसीयत को पूरा कीजिए, उनके विरसे की सही बांट कीजिए। मैं सारे हवाले इकट्ठे बोल दूंगी, बस पॉइंट्स लेके बात को पूरा कर लेते हैं। उनके लिए कसरत से इस्तग़फ़ार करें, सूरत इब्राहिम 41। उनके लिए दुआएं करें, मुस्लिम 1631। किसी से कोई वादा कर गए, अहद कर गए, पूरा कीजिए। कोई मन्नत मान गए नेकी के काम की, पूरी कर दीजिए। फिर उनके दोस्तों का एहतराम कीजिए, सही मुस्लिम 6513। उनके रिश्तेदारों से सिला रहमी उनके बाद भी करते रहिए, सही उल जामे 5960। उनकी तरफ से सदका खैरात करें। और मैं आपको नसीहत करूं, जब भी $1 सदके में देते हैं या $1,00,000 देते हैं, नीयत माँ बाप की कर लिया करें। क्या समझ आई? डबल डिलाइट आपका तो नहीं कम होगा ना। देखे ना, थोड़ा ज्यादा हर बंदा कुछ ना कुछ तो करता ही है। कुछ भी करे आज के बाद, वो बीवी अपनी माँ की नीयत कर ले, जो भी कर ले। देखिए, आप समझे मेरी बात को, मुसलमान बड़ा अकलमंद होता है। मैं इसको आपको समझाती हूँ। ईद से कुर्बानी पे आप दो कुर्बानियाँ कर रहे हैं, कहते हैं ये शौहर की है, ये बीवी की है, ऐसे है ना? आप कहें कि ये भी शौहर और बीवी की है और ये भी शौहर और बीवी की है, फ़र्क क्या है? इसमें भी आप दोनों को हिस्से मिल गए, इसमें भी आप दोनों को हिस्सा मिल गया। अब आप कहते हैं कि मैं ये ग्लास पानी का सदका करती हूँ तो मुझे मिला, तो मैं कहती हूँ मैं ये पानी का ग्लास इसलिए सदका करती हूँ कि मेरे बाप को भी इसका अजर मिले, तो किसको मिलेगा? मन दाल अलल खैरी कफाइली ही। बात समझ गया ना? हमेशा सब कुछ, मैं तो अपनी सारी दुआएं भी माँ बाप के नाम पे मांगती हूँ। मैं अपने लिए क्या मांगू, जो मैं मांगूंगी उनको भी तो अच्छा लगेगा ना। ये डबल हो जाएगा। देखिए, हिकमत के साथ तो हम दुआओं में से भी बहुत कुछ ले सकते हैं। फिर इसी तरह से उनकी तरफ से हज कीजिए। बुखारी की रिवायत है 1852। फिर कर्ज़ा अदा करने की रिवायत बुखारी 1852 ही है। फिर इसी तरह उनकी कब्र पे जाकर मसनून दुआ पढ़ें, मुस्लिम 2259। लेकिन क्या इसके लिए शब रात का इंतज़ार करेंगे, जो ईद के दिन का इंतज़ार करेंगे? नहीं, जब मौका मिले जाइए उनकी कब्र पे दुआ कीजिए। फिर इसी तरह से जब वालदैन के अंदर अगर रज़ाई माँ बाप हैं आप में से किसी के, उनके साथ भी यही मामला होगा। ससुराली माँ बाप के साथ भी यही मामला होगा। आगे जाके एक आखिर में देखिएगा ताल्लुक है ससुराली रिश्तों का, तो ये बात उस पे जाके लिख लीजिए। इवन सौतेले माँ बाप से भी वही हुस्न सलूक होगा। रूहानी माँ बाप यानी उसातिसा कराम जो भी आपके हैं बड़े, उनकी इज्जत एहतराम, उनके लिए भी दुआएं कीजिए। और माँ बाप के माँ बाप, नानी दादी और इस तरह से जो बाकी लोग हैं, उनके साथ भी आप अच्छे से अच्छा मामला करती रहेंगी तो इंशाअल्लाह ताला उससे आपको फ़ायदा होगा। और एक छोटी सी बात कहूँ, बहुत सारी चीज़ें आप और मैं चेंज कर सकते हैं लेकिन माँ बाप को चेंज नहीं कर सकते। शौहर उस बीवी को छोड़कर दूसरी ले लेगा, बीवी भी ये काम कर सकती है। आपके मेरे माँ बाप कौन है, ये किसका फ़ैसला है बताइए? तो क्या अल्लाह के फ़ैसलों पर एतराज़ करेंगे? और माँ बाप कोई नहीं बदलना चाहता, चाहे एक काले बच्चे के सामने गोरी औरत खड़ी कर देना तो वो काली औरत को ही कबूल करेगा। ये याद रखिए कि दुनिया में आज आप जो करते हैं ना, कल वो आपके सामने आता है। और इसमें ये दुआ किया करें, माँ बाप की दुआएं लें। सबसे बड़ी चीज़ जिसको वो कहते हैं ना कि इंसान को रंग लगाती है, वो माँ बाप की दुआएं लगाती हैं। आप यकीन करें कि ये उनकी ज़िंदगी में हो ना हो, उनके बाद हो जाता है। दिल खुश करते, उनकी खुशी के लिए कोई ऐसी बात छोड़ दे जो आपका दिल नहीं मानता, आप देखेंगे कि उससे उनको फ़ायदा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो इतात और खिदमत का कॉन्सेप्ट समझ आए, बस ये इतना सा फ़र्क है जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते। खिदमत में कमी नहीं करनी। आपने हज़रत असमा से कहा कि माँ आ गई तो वैसे ही करो जैसे माँ होती है, हालांकि वो मुशरिका थी, ठीक है? अबू सुफियान आए तो बेटी ने बिस्तर लपेट दिया। क्यों लपेटा? कि ये एक नबी का बिस्तर है और आप मुशरिक हैं। तो ये बैलेंस रखना बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जिनके माँ बाप हैं वो उनको सलामत रखे और उनकी दुआएं मिलती रहें, और जिनके नहीं है उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए सदका जारिया बने। मेरे अलावा सबसे बड़ा हमारे माँ बाप का हक हम पे, क्या जो मैंने अभी जिक्र भी नहीं किया, आप बोल दीजिए तो मैं इस पे ख़त्म कर देती हूँ। खुद को नेक बना लें, फ़राइज़ का पाबंद और अख्लाक में आला। आप अपने माँ बाप का करंट अकाउंट है, वो दुनिया में हैं कि नहीं? कभी किसी नेकी में सुस्ती आए ना तो उनको याद कर लें, वो कब्र में, वो नहीं आ सकते, आप कर लीजिए नेकी। यानी अपनी नेकियों को बढ़ाना, अपने माँ बाप पे रहम करना है। और अब रहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इस पे बहुत सारी पोइम्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे इस पे प्रेजेंटेशंस भी हैं। बस आज ये दुआ कीजिए कि अल्लाह अगर हमारे लिए उनके दिलों में कहीं कोई कमी बेशी है तो उसको दूर कर दे। एक चीज़ नहीं हुई, वो भी नोट कर लीजिए, किसी के माँ बाप उससे नाराज़ थे और दुनिया से चले गए, अब क्या होगा? یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تھا. ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے باپ یا ماں دونوں میں کوئی تھا تو وہ مجھ سے ناراضگی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے, اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کثرت سے ان کے لیے دعا کرو, اللہ ان کو وہاں تم سے راضی کر دے گا. بعض دفعہ اولاد نیک ہو جاتی ہے, ماں باپ خوش ہی نہیں ہوتے یا ماں باپ غلط سوچ پہ ہیں, تو رب ارحمہما کے بعد اگلی آئے جا کے اس کا جواب لے لیجئے. اللہ کہتے ہیں اگر وَإِن تَكُونُوا صَالِحِينَ, تم نیک بنے رہو تو اللہ تعالیٰ ان کو تم سے راضی کر دے گا. ساری بات کا یہ خلاصہ کہ آپ کے ماں باپ اگر آج آپ کو نیکی سے روکتے ہیں, کسی کے ماں باپ روکتے ہیں کلاس میں نہیں جاؤ تو کیا کریں, پیار سے ان کو ساتھ لے آئیں, بات کر لیں, لیکن کل وہی آپ کو اس پہ انشاءاللہ دعائیں بھی دیں گے. تو جزاک اللہ خیر, وحسن جزاک.